Dale,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यमुना तीरावन जारी यमुना तीरावन यमुना तीरावन जारी यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन दानन्दन यमुना तीरावन जारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से बोलिए ताली के साथ Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Radha Jaya Jaya Jagannath Jagannath Baladev Subhadra Jaya Jaya Jagannath Jagannath Jaya Gauranitai Gauranitai ताई जय गौरानी ताई जय गौरानी ताई गौरानी ताई ताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद मंगल हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गिरधारी भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय की श्री श्री गौर निताय की श्री प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जय मुदीरये श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 7 उतार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः उतार्य गोपी प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् भगनं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जंहासतं चापि न तत्र पश्यति तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् भगनं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् भगनं विलोक्य स्वसुतस्य जंहासतं चापि न तत्र पश्यति उतार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमद्रकम् भगनं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जंहासतं चापि न तत्र पश्यति
Thank you.
उतार्य अंगीठी से उतार कर गोपी माता यशोदा सुश्रुतम अत्यंत गर्म पयः दूध पुनः फिर से प्रविश्य मथने के स्थान पर घुसाई संदृश्य देखकर च भी दधिय अमत्रकम दहेडी भगनम टूटी हुई विलोक्य देखकर स्वसुतस्य अपने बालक की कर्म करतुत कात वह जहास हंसने लगी तम च कृष्ण को भी अपि साथ ही ना नहीं तत्र वहां पश्चती ढूंढती हुई। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की गर्म दूध को अंगीठी से उतार कर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूट गई है और कृष्ण वहां नहीं है तो वे जान गई कि यह कृष्ण की ही करतूत है। तात्पर्य जिलोवनी को टूटी हुई तथा कृष्ण को अनुपस्थित देखकर यशोदा बिल्कुल समझ गई कि मटकी फोड़ना कृष्ण की ही करतूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री प्रभुपाद की इतना ही तात्पर्य इस पर। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलिन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवमं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्त नमोऽस्तु ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भूतेर्महत्पादयिमा पुरो विभु निर्माय क्षेत्रेर्यदमोक्षपुरुषः भुङ्क्तेर्गुणान् षोडशात्मकम् स्वलङ्कृसृष्टं भगवान् वसांसि मे जयतां सुरतों भङ्गुं मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधा मदन मोहन श्रीराधा मदन मोहन हरे कृष्णा पधारे हुए सभी वैष्णवों का श्री श्री राधा गिरधारी प्रांगण में स्वागत है। भगवान की पवित्र कीर्ति का गान यहाँ पर प्रतिदिन हो रहा है। भक्तों का एकमात्र कर्तव्य यही है कि वो भगवान की कीर्ति को गान, जीव मात्र के लिए ये जो भगवान की कीर्ति का गान कहना सुनना ये बड़ा पवित्र करने वाला है। तो यहाँ पर भगवान की वात्सल्य लीला प्रारंभ हुई है नौवें स्कंद में, दसवें स्कंद नौवां अध्याय प्रथम श्लोकों में, प्रथम और दूसरे श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हुए कहते हैं, एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी कर्मांत नियुक्त निर्म मंथ स्वयं दधि। माँ यशोदा एक दिन स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठी हैं। वैसे तो 9 लाख गायियां होने के कारण बहुत सारी दास दासियां हैं, परंतु सभी को नियुक्त आशु अन्य कार्यों में सभी दासियों को नियुक्त करके स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठी हैं। और जब दधि मंथन करती हैं तो कैसे करती हैं उसका भी विवरण दूसरे श्लोक में दिया गया है। जब दधि मंथन करती हैं तो भगवान के जो आज तक हुई हुई अलग अलग अद्भुत लीला है उनको दान कर रही है, हाथों से घर का काम कर रही है और मुख से भगवान की लीलाओं का चिंतन कीर्तन कर रही है, गायंती गा रही है। और फिर आगे के श्लोक में यशोदा जब मंथन कर रही है तो उनका कैसा दर्शन, जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है उनकी क्या स्थिति है उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने कैसा वस्त्र पहना हुआ है और क्या क्या उनकी सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब माँ यशोदा इस प्रकार से कृष्ण के लिए दधि मंथन करने लगी और मुख से भगवान के गुणगानों को गा रही थी तब क्या हुआ, बोले लाला जो सो रहा था पलने में, तन्य कामाशाद्य मंथंतिं जननीं हरे स्तन्य काम। भगवान सो रहे थे परंतु उनको स्तन्य काम हो गया, माता का दूध पीने की इच्छा हो गई। तो वैसे तो कहा जाता है कि भगवान आप्त काम है, जिनको कोई कामना नहीं होती है, कामना तो संसार के हम जैसे जीवों को होती है, परंतु भगवान को कोई कामना नहीं होती है। तो फिर यहां काम शब्द यूज किया, कामना कैसे हो गई, बोले भगवान को संसार की भौतिक वस्तु की कुछ कामना नहीं होती है, परंतु जब भगवान ने देखा कि माँ यशोदा हृदय में भक्ति को भर करके भगवान की सेवा में लगी है, तो यदि कोई इस प्रकार से अपने शरीर से वाणी से और कर्म से, मन और वाणी और कर्म से, क्योंकि तीनों भगवान की सेवा में लगा था यशोदा का, शरीर कर्म से लगा था, मन में भगवान की चिंतन कर रही थी और वाणी से उसको गा रही थी, तो इस प्रकार से जब कोई भक्त भगवान की सेवा में लगता है तो उनके हृदय का रस पीने के लिए भगवान भी कामना उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान को उनके हृदय से भक्ति रूपी रस को पीने की कामना उत्पन्न हो गई और इसलिए वो अपने पलने से उठ करके आ गए। भगवान जब ऐसा कोई मन वाणी और कर्म से भगवान की सेवा में लगता है तो भगवान उनके सामने आ जाते हैं। तो ठाकुर जी आ गए। फिर आगे के श्लोकों में वर्णन है कि जब आ गई तो आप सबने सुना होगा कि माता ने उनको अपने अंशन में भर लिया, अंक में भर लिया और दूध पिलाने लगी। और फिर उसी समय कन्हैया के लिए जो दूसरा दूध रखा हुआ था चूल्हे पर गर्म करने के लिए पद्मगंधा गाय का, आज तो साधारण गाय का भी दूध मिलना मुश्किल हो रहा है, वो तो पद्मगंधा गाय जिनके दूध से कमल की सुगंध आती थी, ऐसा स्पेशल दूध कन्हैया के लिए माता ने चूल्हे पर रखा था कि कन्हैया के लिए पिलाऊंगा इससे, तो उसी समय वो दूध उबलने लगा। तो आचार्य भाव देते हैं वो उबल रहा था कि अब कृष्ण जो है माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं तो अब वो मुझको नहीं पिएंगे। ब्रज की हर चीज हर वस्तु चिन्मयी है, अपने आप में स्वरूप में है। तो दूध भी सोचने लगा कि यदि कन्हैया माँ यशोदा का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे तो फिर वो मुझे नहीं पिएंगे। और यदि मेरा जीवन कृष्ण के काम में नहीं आया तो ये जीवन धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसे कर करके उबल करके आग में अपने आप को नष्ट कर रहे थे। तो ऐसे सोच ही रहे थे और उबलने जा रहे थे, तब तक माँ यशोदा ने कृष्ण जो संतान कर रहे थे उनको साइड में रख करके वो दूध लेने चली गई। और दूध लेने चली गई तो यहाँ पीछे क्या हुआ, संजात कोप स्फुरितारुणाधर। भगवान जो है संजात कोप, पहले काम उत्पन्न हुआ, यहाँ पर क्रोध उत्पन्न हुआ है? क्रोध हो गया। क्रोध क्यों हो गया है? क्योंकि अतृप्त मृत्सृज्य, भगवान अपनी माता के इस भक्ति रस को, हृदय के रस को पी रहे थे, आनंद ले रहे थे, और अतृप्त अवस्था में ही यशोदा ने छोड़ दिया, अभी तृप्त नहीं हुए थे। आचार्य कहते हैं कि माता का दूध कभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि वो साधारण दूध नहीं था, भक्ति रूपी प्रेम ही था, और भक्ति रूपी प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। माता का दूध भी खत्म नहीं होने वाला था और भक्ति रूपी रस को पीने में भगवान भी कभी अतृप्त नहीं होते थे, इसलिए वो चलता रहने वाला था। तो भगवान अतृप्त अवस्था में ही यशोदा ने उनको छोड़ दिया, इसलिए वो नाराज हो गए और क्रोध आ गया। इसे हम शिक्षा भी ले सकते हैं कि हम जब भगवान का हरिनाम जप करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं तो इस प्रकार सेवा करते हैं तो भगवान इसको ग्रहण करते हैं, भगवान उसका आनंद लेते हैं, और यदि उन सेवाओं को हम अतृप्त अवस्था में यदि छोड़ देते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं महामंत्र, तो भगवान उस नाम को सुनकर आनंद लेते हैं, आ जाते हैं मन में। परंतु उसी समय यदि हम जप करते करते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हैं? या हम मोबाइल फोन उठा लेते हैं, तो क्या होता है, प्रभु नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अतृप्त अवस्था में ही उनको छोड़ दिया जाता है। वो भी इतना इतना आनंद आता है तब तक हम किसी अन्य कार्य में लग जाते हैं, हमारा ध्यान चला जाता है, मन चला जाता है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए भक्तों को, जब तक हम जप करते हैं अन्य कार्यों को न करते हुए बड़े ठीक से जप करना चाहिए। तो अतृप्त अवस्था में कृष्ण को छोड़ दिया, भगवान क्रोधित हो गए। और अब का जो श्लोक है कि क्या किया उसकी बात का श्लोक, इससे पहले का श्लोक है कि भगवान जब क्रोधित हो गए तो क्या किया है? उन्होंने बाजू में जो रखा हुआ पत्थर था उनसे माता यशोदा के द्वारा जो मथी दही मंथन किया जा रहा था उस भांडी को बिल्कुल निश्चित छेद कर दिया, फोड़ दिया, और सारा दही सास जो मक्खन था बहने लगा। और फिर जब माँ यशोदा उतार या गोपी, माँ यशोदा आज का श्लोक है कि उतार करके जब आई वापस उस स्थान पर, तो उन्होंने क्या देखा, भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मत। उन्होंने देखा कि ये जो है भगनम विलोक्य, उन्होंने देखा कि इस भांड को फोड़ा हुआ है, तो तुरंत ही समझ गई स्वसुतस्य कर्मतत्, ये मेरे लाला की करतूत हैं। और माँ यशोदा प्रसन्न भी हो गई, जो हास वो हंसने लगी, हंसने इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा लाला जो है बुद्धिमान हो गया है, इसलिए खुश हो गई माँ। भले उन्होंने छोड़ा, बाद में क्रोध भी करेगी, परंतु अभी देखकर हंसी, हंसने लगी कि कन्हैया बुद्धिमान हो गया, क्योंकि उन्होंने उस भांड के बिल्कुल नीचे छेद किया ताकि थोड़ा सा भी दही न बचे। और बड़े जो होते हैं छोटों के इस प्रकार से प्रगति को देखकर या उनके कार्य को बड़ा देख करके प्रसन्न होते हैं। तो माँ यशोदा हंसी और फिर कृष्ण को ढूंढने लगी। इस प्रकार इस श्लोक का अनुवाद केवल प्रभुपाद जी ने किया है, हमने भी प्रयास किया। वैसे तो इस पर आचार्यों ने दूध पर और इन अलग अलग कार्यों पर अलग अलग बातें लिखी हैं, परंतु आज अन्य आचार्यों का भी बहुत सारा, जैसे हमारे चार आचार्य हैं, इसमें से विश्वनाथ चक्र ठाकुर जिनका आज तिरोभाव दिन है, रघुनंदन ठाकुर जिनका आविर्भाव दिन है, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जिनका भी आविर्भाव दिन है, और पुंडरीक विद्यानिधि उनका भी आविर्भाव दिन है, और उसमें भी सिरमौर विष्णुप्रिया देवी जी उनका भी आविर्भाव दिन है। अब क्या कहे क्या न कहे। भगवान के भक्तों के एक एक चरित्र इतने अद्भुत हैं, और क्योंकि इस भगवान जब इस धरातल पर आते हैं, जैसे राम अवतार लिए या चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, तो जगत को अपने आचरण से शिक्षा देने के लिए आए, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परंतु भक्ति की शिक्षा देने के लिए वो अपने आचरण से देने के लिए आए हैं। तो स्वयं भी आते हैं और उनके साथ साथ जितने भी परिकर आते हैं वो भी अपने आचरण से भक्ति की शिक्षा देते हैं। तो इतने सुंदर चरित्र को सुन करके हमारे हृदय में भक्ति का प्राकट्य तुरंत हो जाता है। यहां तक आचार्य ने कह दिया है कि भगवान के चरित्र से भी बढ़कर भक्तों के चरित्र हैं, और भगवान भी अपने भक्तों के चरित्र को सुनना बहुत पसंद करते हैं। ये आपस में है, भक्त जो है भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हैं, और भगवान जो है अपने भक्तों के चरित्र को सुनना चाहते हैं, और भक्तों के लिए भक्तों का चरित्र जो है वो सुन करके एक हृदय में ऐसा अनुभव होता है, ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम किस प्रकार ऐसा जीवन बना सकते हैं, या भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है, भगवान की सेवा क्या होती है, वो उसको कैसे किया जा सकता है, इन भक्तों के चरित्र से सुनने मिलता है। तो वास्तव में ऐसे भक्त हैं कि जिनके बारे में लिखना बड़े बड़े आचार्य है, जैसे विष्णुप्रिया है, पुंडरीक विद्यानिधि है, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सभी भक्तों के चरित्र को, और उसमें खास करके जो विष्णुप्रिया देवी जी हैं उनके चरित्र को हमारे आचार्य लिखते लिखते बंद कर चुके हैं। कुछ कुछ आचार्य लिखना लेखनी उनकी रोने रो पड़ी जब इनका चरित्र लिखने गए, तो लेखनी बंद हो गई, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, हृदय गदगदित हो गया, लिख नहीं पाया आगे। अब इन चरित्रों को बड़े बड़े आचार्य भी अपने आप को लिखने में या कहने में असमर्थ समझते हैं, दिन्यवश या संकोच करते हैं, तो हम जैसे लोग तो क्या कह पाएंगे, फिर भी साहस करेंगे, साहस इसलिए करेंगे इसको पूरा कहना तो मुश्किल है, थोड़ा अंश भी यदि कह दिया जाए तो अपने आप को धन्य कर लिया जाए, अपने जीवा को अपने मन को पवित्र कर लिया जाए, इस विश्वास से हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इनमें से एक आचार्य हैं रघुनंदन ठाकुर, ये जो है मुकुंद दास के पुत्र थे, और जगन्नाथपुरी में जो गोपीनाथ जी हैं गोपीनाथ जी की सेवा करते थे मुकुंद दास जी, और उनके पुत्र है रघुनंदन। तो ये जो है उनके पिता प्रतिदिन गोपीनाथ जी को भोग लगाते थे, और कुछ समय के लिए वो गोपीनाथ जी की सेवा को छोड़कर कहीं जाना हुआ, तो अपने छोटे से पुत्र को कहा कि तुम ठाकुर जी को भोग लगाना, अच्छे से सेवा करना। तो पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया रघुनंदन ने, और उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जब तक भोग ले ले उसका ध्यान रखना, ठीक से भोग लेने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। तो वो गए कहीं बाहर, और रघुनंदन ने सुंदर जो व्यंजन था ठाकुर जी को, गोपीनाथ जी को भोग लगाया, भोग लगाया और कई समय हो गया, पर उन्होंने देखा कि अरे ठाकुर जी ने तो ग्रहण नहीं किया, और उनको लगा कि पिता की आज्ञा थी कि भगवान ग्रहण कर ले। तो कई समय उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ने अभी तक भोग जो है गोपीनाथ जी ने स्वीकार नहीं किया है, और हृदय में बड़ी ग्लानी हुई कि मैं पिता की आज्ञा को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे प्रभु आज भूखे रहेंगे। और इस प्रकार से हृदय गदगदित हो गया और दुखी हो गए। तब क्या हुआ, ठाकुर जी ने जो है सारा भोग जो है प्रकट रूप में ग्रहण कर लिया। संसार में प्राय जो अश्रद्धा है वो ये समझते हैं कि जब ठाकुर जी के सामने भोग लगाया जाता है वो नहीं खाते हैं, परंतु भगवान अवश्य ग्रहण करते हैं। तो गोपीनाथ जी ने उस भोग को ग्रहण कर लिया, और तब तक जो है मुकुंददास आ गए, और उन्होंने रघुनंदन ने कहा कि रघुनंदन को कहा कि जो प्रसाद भोग तुमने लगाया है अब बचा हुआ प्रसाद हमको दो, प्रसाद ग्रहण करना है। तो रघुनंदन ने कहा कि वो तो सब गोपीनाथ जी हैं, सब तो सब वो खा गए। बोले कैसे हो सकता है। तब उन्हें कहा फिर हमारे सामने भोग लगाओ। तो उन्होंने फिर कुछ लड्डू दिए, एक लड्डू दिया तो, और मुकुंददास जो है वो छिप करके पर्दे के पीछे से देख रहे थे। तो ठाकुर जी ने आधा लड्डू जो है ले लिया और आधा बच गया। तब मुकुंददास जी के देखा कि वो ये मेरा बच्चा छोटा है परंतु ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त है। उनकी भक्ति को देखकर भगवान ने प्रकट रूप में गोपीनाथ जी ने भोग ग्रहण किया। फिर आगे चलकर नीलाचल में जब चैतन्य महाप्रभु रहते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंददास को पूछा कि ये तुम्हारा बेटा है या तुम्हारा बाप। तो मुकुंददास जी कहते हैं कि वास्तव में मेरे बाप के समान है, क्योंकि इनकी भक्ति तो मुझसे भी ज्यादा है। या वास्तव में कोई छोटा बड़ा भक्ति से होता है, संस्कारों से होता है, उनके गुणों से होता है, न केवल शरीर से। तो इस प्रकार के प्रसाद ग्रहण की लीला भगवान ने उनके साथ की है, वो है रघुनंदन दास। और तत्पश्चात हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, जिनने बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की है, और भागवत पर उनकी विशेष टीका है वैष्णव आचार्यों में। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी भगवान की भक्ति में जो है उसमें भी परकिया भाव जो है उनके बड़े भक्त रसिक भक्त हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और उन्होंने वैष्णव सिद्धांतों को, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किए हैं, और कई बार उनके इस सिद्धांतों को काटने का प्रयास भी किया गया अन्य लोगों के द्वारा, परंतु वो सबको हरा करके इन वैष्णव सिद्धांतों को बड़े ठीक रूप से प्रस्तुत किए हैं। उनकी एक छोटी सी लीला में आपको कहूँ, एक बार जब वो वृंदावन में थे तो कई पंडितों ने उनका विरोध किया, इनकी इस परिक्रिया रस पर अकाट्य जो चर्चाएं लिखी हुई थी, सिद्धांत लिखे हुए थे गौड़ीय वैष्णव, तो उन्होंने विरोध किया, और यहाँ तक विरोध किया कि वो लोग उनको मारने पर तुल गए। यदि इनकी ख्याति बढ़ गई तो हमारा जो है कोई हमें पूछेगा भी नहीं। इस प्रकार से इनको मारने का प्रयास किया गया। तब वो वृंदावन के कुंजों में कृष्ण भक्ति में मत रहकर घूमने लगे, और जब कुंजों में घूमते रहे तो ये लोग जो उनके पीछे जाकर उनके वो जान से मारना चाहते थे। और तब जब वे लोग उसके पीछे पीछे गए घोर वृंदावन के वनों में, कुंजों में, गहरे कुंजों में, तो जब वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो उसमें बीच रास्ते में उन लोगों को एक बालिका, छोटी सी बालिका मिली, उस सखियों के साथ, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि यहाँ से वो बाबा जो गए वो कहाँ गए आपको पता? तो उस बालिका ने कहा कि ये जो पूरा कुंज है ये हमारी जो महारानी है, हमारी स्वामिनी राधा रानी का है, वो जावट में निवास कर रही है अभी, और उनके सखी हम लोग, उनकी दासी, उनकी आज्ञा से यहाँ पर पुष्प चुनने के लिए आई हैं, और ये पूरा जो कुंज है राधा रानी का है, यहाँ पर किसी भी पुरुष को आने के लिए परमिशन नहीं है। तब वो लोगों ने कहा ऐसा कैसे, और इतने में ही, इतना कहकर के वो जो बालिका स्वरूप था वो वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई, और बालिका के स्वरूप में वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खड़े थे। अद्भुत चमत्कार देख करके वो जो विरोध करने वाले थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में पड़ गए और कहा कि क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई। इस प्रकार की कई घटनाएं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में हैं। ये हमारे आचार्य हैं। तत्पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे सड़ गोस्वामी से गोस्वामियों में से एक हैं, भाई आप सब उनके बारे में तो जानते ही होंगे, जो वैराग्य जीवन का बहुत बड़ा शिक्षण उनके जीवन से मिलता है। प्रारंभ से ही उनके पिता जो थे गोवर्धन दास और उनके साचा जिनका नाम था हिरण्य, श्री हिरण्य, इन दोनों भाई के बीच में जो गोवर्धन दास का एक लौता पुत्र था, और ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत सारा धन था इनके पास, परंतु जब से इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गुणों को सुना था उसी दिन से उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु को मिलने की बड़ी उत्कंठा हो गई थी। तो फिर उनका विवाह भी करा दिया गया और वो जाने नहीं देते थे कहीं पर, परंतु जब उनके उनको बहुत दुखी देखा तब माता पिता ने, वो चाह रहे थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाऊँ, तो आज्ञा दी कि ठीक है आप जाओ, परंतु तुम हमारे एकमात्र हमारे आंखों के तारे हो, इसलिए लौट कर वापस आ जाना। वो गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए और महाप्रभु ने उनको देख कर बड़े प्रसन्न हो गए, और वो महाप्रभु के चरणों में रोने लगे कि प्रभु अब मुझे आपके चरणों में रखिए, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। तब महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी कि तुम अभी वापस अपने घर जाओ, और तुम जो गृहस्थ जीवन में हो उसी को अभी थोड़े समय के लिए उसको भोगो, और भोगते भोगते विषयों से अनासक्त हो जाओ। वैसे तो वो इतने बड़े आचार्य है कि वैराग्य वैराग्य हो चुका था, परंतु चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देना चाहते थे जगत को कि अभी तुम मरकर वैराग्य मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब तुम थोड़े समय के लिए अभी घर गृहस्थी में रहो और धीरे धीरे अपने विषयों से अनासक्त हो जाओ, फिर जब पूर्ण वैराग्य होगा तो ऐसा समय आएगा मेरी कृपा से कि तुम वापस मेरे पास लौट आओगे। तो आज्ञा से, भगवान की आज्ञा मानकर जो है रघुनाथ दास ठाकुर फिर से अपने घर लौट गए, और कई समय तक उन्होंने गृहस्थ जीवन का पालन किया और उसी में ही भक्ति भजन करते रहे, और फिर समय मिलने पर जब पूर्ण वैराग्य से चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरणा दी हृदय में, तो फिर से वो महाप्रभु के पास लौट आए। जगन्नाथपुरी में भी वो बहुत समय तक रहे, और वहां पर वो जब रहते थे तो उनका जीवन बताया गया है। महाप्रभु कभी कभी पूछते थे किसी भक्त को कि रघुनाथ कैसे रह रहा है, तो भक्त बता रहे पूछ रहे थे कि वो कहाँ प्रसाद ले रहा है, तो कुछ वैष्णव ने बताया कि महाप्रभु वो प्रसाद कहाँ लेते हैं, और लेते भी है तो क्या लेते हैं। बोले जगन्नाथ पुरी में आप जब जाएंगे तो वहां पर प्रसाद मिलता है ना, तो जो आप बेचने वाले प्रसाद बेचने वाले पर रहते हैं तो उसमें जो प्रसाद एक दो दिन या तीन दिन से पड़ा हुआ है कोई लेने वाला नहीं है, या जो प्रसाद नीचे गिर जाता था उस प्रसाद को लेकर के अपनी कुटिया पे आ जाते थे और उसको धो करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसी को ग्रहण करते थे जिससे जीविका चल जाए। वैष्णव के लिए यही उपदेश है कि जितना हमारा शरीर चल जाए और जितने में भजन हो उतना ही प्रसाद ग्रहण किया जाए। और सुस्वादिष्ट व्यंजन है सब वैष्णव के लिए ठीक नहीं जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है। जिवार लाल साई उतिधाई शिश्रो धरा परायण कृष्ण नहीं पाए। भक्ति बहुत बड़ी बीमारी है ना। और रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में भी कहते हैं कि यदि हम हमारी जिह्वा को वश में कर लेते हैं और तो सारी जो इंद्रिया है अपने आप वश में हो जाएगी। जिह्वा को केवल कृष्ण प्रसाद खाने पर सीमित कर दिया जाए है? तब तो हम सोचेंगे कि अरे कृष्ण प्रसाद ही खाना है, तो फिर पिज्जा पानी पूरी हम सब भगवान को भोग लगाएंगे खाएंगे प्रसाद तो हो गया है ना। परंतु ये तो जो है बाहर के लोगों को कहा जाता है कि आप कम से कम जो भी खाना चाहते हो भगवान को भोग लगा करके खाओ, परंतु भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के लिए तो सात्विक भोजन होना चाहिए, बहुत खट्टा तीखा मीठा नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन होना चाहिए जिससे क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार हमारा जितना शुद्ध है उतना ही हमारा मन शुद्ध होगा और इस शुद्ध सत्वमयी मन से ही भगवान की लीलाओं को पकड़ा जा सकता है, भगवान की भक्तों पकड़ा जा सकता है। तो ये है हमारे लिए उपदेश यहां से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उस और आगे चलकर उनके लिए ये भी आता है कि वो जो है अपने आप को इतना नीच मानते थे और इतना वैराग्य था कि और जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है, तो वो जो है कभी चैतन्य महाप्रभु पूछते थे वैष्णवगण बताते थे कि वो जो है जगन्नाथ जी का प्रसाद जो फेंक दिया जाता है या जो गटर में चला जाता है, उस गटर से निकाल करके उसको धो करके खा लेते थे। यह है हमारे आचार्य भक्तों। तो इतना वैराग्य, वैराग्य की शिक्षा इन रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलते हैं। मैं तो केवल स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसी कई घटनाएं उनके जीवन में है जिसको सुन करके ज्यादा नहीं परंतु कम से कम थोड़ा सा यदि हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और इसके बाद अब संकोच होता है क्योंकि इन आचार्यों के चरित्र तो इतने शॉर्ट में कहना अपराध भी हो जाता है, परंतु अब क्या करें है ना, हमारी बुद्धि भी इतना पकड़ पाती है और समय भी बहुत कम है। तो आगे और भी है जो है पुंडरीक विद्यानिधि, मैं सोचा था कि इन दो भक्तों का चरित्र विस्तार से कहूंगा, पुंडरीक विद्यानिधि और जो है विष्णुप्रिया देवी। पुंडरीक विद्यानिधि एक ऐसे भक्त हैं और चैतन्य महाप्रभु जो है जब कभी कभी भावावेश में आ जाते थे कृष्ण कृष्ण कहते और साथ साथ वो एक दूसरे शब्द को उच्चारण करते थे। जब श्रीनिवास आचार्य के घर में कीर्तन होता था तो कृष्ण का एक नाम है पुंडरीक, तो वहां पर वो पुंडरीक उच्चारण करते करते कभी पुंडरीक विद्यानिधि उच्चारण कर देते थे, पुंडरीक विद्यानिधि हा बाप हा बंधु ऐसा करके उच्चारण करते थे। तो वास्तव में तब भक्तों को पता नहीं चलता था कि ये कौन है, परंतु जब नदिया में निवास करते थे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में, तो फिर ये जो है पुंडरीक विद्यानिधि वो पहले एक गांव में रहते थे परंतु बाद में वो भी जो है नवद्वीप आ गए रहने के लिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि ऐसा वर्णन करते हैं आचार्य कि कृष्ण लीला में जो है ये वृषभानु बाबा है राधा रानी के पिता, और चैतन्य महाप्रभु जो है राजा रानी के भाव में है, इसलिए हाँ बाप हाँ बंधु इस प्रकार से उच्चारण करते थे। इसके बारे में वर्णन है कि जब वो नवद्वीप आ गए तो मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त जो महाप्रभु के भक्त हैं और वो इस तांत्रिक विद्यानिधि के पास कृष्ण कथा आपस में चर्चा करने के लिए जाया करते थे। वैष्णव का यही जीवन होता है कि वो आपस में कृष्ण कथा चर्चा करते सुनते हैं कहते हैं। तो रोज मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त दोनों ही तांत्रिक विद्यानिधि के यहाँ कथा वार्ता करने के लिए जाते थे। तो एक दिन जो है ये जो है गदाधर पंडित वो मुकुंद दत्त के मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ आओ एक दिन, बड़े सुंदर वहां पर भगवान कृष्ण की कथा चर्चा होती है। तो गए और जाकर के उन्होंने देखा, क्या देखा, बोले पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत बड़े मंच पर पलंग पर सो रहे हैं, ऐश्वर्यमय जीवन था उनका और कई दास दासियां उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई पंखा जल रहा है। और गदाधर पंडित ने देखा तो जिसम बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे बसते, ये तो विषयों में आसक्त पड़े हैं। और जब मुकुंद दत्त ने देखा कि अरे गदाधर पंडित के मन में कुछ संशय हो रहे हैं, तब जो है मुकुंद दत्त ने एक श्लोक उच्चारण किया उसी समय जब वो पुंडरीक विद्यानिधि पलंग पर सो रहे थे और सब दास दासियां उनकी सेवा कर रहे थे। तो मुकुंद दत्त ने एक श्लोक उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघासया पायद सत्य साध्वी लेभे गतिम धातृताम त्वतोन्यम तम दयालु शरणम ब्रजेत। इस श्लोक को उच्चारण किया और जैसे ही श्लोक को उच्चारण किया वो पुंडरीक विद्यानिधि अपने मंच से खड़े हो गए, खड़े हो करके नाचने लगे और उनकी आंखों से अजस्र विरस अश्रु धारा बहने लगी, उनके रोंगटे खड़े हो गए और हृदय गदगदित हो गया और पछाड़ खा खा करके पृथ्वी पर गिरने लगे, इतना भाव आवेश पैदा हो गया भगवान की श्लोक को, भागवत की इन श्लोक को सुनकर। उस श्लोक में क्या है, उस श्लोक को आप जानते प्रसिद्ध हैं, कहो बकी यन स्तनकाल कूटम, ये श्लोक को सुनकर सुखदेव गोस्वामी भी आकर्षित हो गए थे भागवत के प्रति। भगवान की करुणा का वर्णन है कि कितनी करुणा है उस प्रभु में कि जो पुतना उनको मारने के लिए आई थी उस मारने वाली पुत्रा को अपनी धात्री माता की गति प्रदान कर दी, ऐसा कोई है इस दुनिया में। इस भगवान की करुणा रूपी गुण को सुनकर, भगवान के इस भागवत के श्लोक को सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो भगवान के प्रेम में आविष्ट हो गए और नाचने लगे, हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा। और तब जो है गदाधर पंडित को अफसोस हृदय में पश्चाताप हुआ कि अरे रे मैंने अपने मन में गलत संशय कर लिया। और इस प्रकार से फिर उन्होंने उन्हीं से मंत्र दीक्षा, उन्हीं से मंत्र लिया। और मंत्र लेने से पहले उन्होंने महाप्रभु से अनुमति ली तो महाप्रभु ने अनुमति दे दी और फिर विद्यानिधि की इच्छा हुई महाप्रभु के दर्शन करने की, तो तुरंत महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं और दोनों आवेश में आ जाते हैं। और फिर वो वहीं से जाना नहीं चाहते थे महाप्रभु के पास से, तो वो वहीं रहते थे, बाकी सब जो भक्त थे जगन्नाथपुरी सब लोग गए थे तो वापस आए गए नवद्वीप, परंतु पुंडरीक विद्यानिधि वहां से जाना नहीं चाहते थे। तो कुछ दिन उसके साथ ही रहे और कथा कीर्तन वार्ता करते रहे। वास्तव में वैष्णव का जीवन कोई समझ नहीं सकता उनकी क्रिया मुद्राओं को। इतने महाभू और भी एक स्थान पर कहते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्र विज्ञे ना बुझे, कि गदाधर पंडित मन में संशय हुआ और जब बाद में देखा तो पता चला कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। वो ऐश्वर्यशाली जीवन में थे परंतु हृदय में तो भगवान के प्रति भक्ति भरी थी और समय आते ही उनकी भक्ति जो है प्रकट हो गई। वे पुंडरीक विद्यानिधि और अंत में समय तो हो चुका है परंतु क्षमा कीजिए थोड़ा समय और लेंगे, विष्णुप्रिया देवी जी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है और स्वयं प्रिया है। चैतन्य महाप्रभु की दो पत्नियां थी जिनका नाम था लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया जो आगे ही भगवान धाम को सिधार गई, तत्पश्चात ये जो विष्णु प्रिया है उसके बारे में उल्लेख आता है कि कृष्ण लीला में ये जो है सत्राजित पुत्री भगवान कृष्ण ने विवाह किया था, पता है स्मयंतक मणि के पीछे है जो तीन पत्नियों को लेकर आए थे। स्मयंतक मणि जब चली गई उसके आरोप आए भगवान के ऊपर और जब लेने के लिए गए तो कई सारी कन्याओं को विवाह करके आए जिसमें एक जाम्बुवती है एक सत्यवती है दो सत्यभामा। तो यही सत्यभामा के अंश रूप जो है विष्णु प्रिया है। और भी आचार्य गण बताते हैं गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर कहते हैं ये जो है भू शक्ति है। भगवान की तीन शक्ति है श्री शक्ति भू शक्ति और लीला शक्ति। श्री शक्ति जो है भगवान के सौंदर्य और ऐश्वर्य का विधान करती है और भू शक्ति जो है इस सृष्टि उत्पत्ति और उसको रखने का विधान करती है और लीला शक्ति जो है भगवान की लीलाओं का अलग अलग विधान करती है। तो ये सब आह्लादिनी शक्ति है भगवान की आनंदमय शक्ति है। तो इस भू शक्ति ही विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट हुई थी भगवान की लीला में। तो इस समय जो है विष्णुप्रिया जब बहुत छोटी थी तभी से ही गंगा स्नान करने जाया करती थी। सभी माताएं गंगा स्नान करती थी तो रोज सती माता का उनसे मिलन होता था। तो सती माता सोचती थी कि यदि ये मेरे निमाय के लिए मिल जाए तो अच्छी जोड़ी बन जाएगी। तो मन में ऐसी कामना करती थी और एक दिन उन्होंने काशीनाथ को कहा कि आप ये चर्चा कीजिए बात कीजिए और ताकि उनका विवाह जो है हमारे निमाय से हो जाए। तो विष्णुप्रिया के पिता का नाम था सनातन मिश्र। तो उनसे बात किया और वो प्रसन्न हो गए। फिर निमाय का और उनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो उनका उम्र था 11 था। ये पहले के समय में बहुत छोटी आयु में विवाह होता था। विवाह हो गया। विवाह के बाद घर आ गए और उनका गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर चल रहा था। परंतु निमाय जो है वो अपने अध्ययन में लगे हुए थे। उनका जीवन अब और कई सारे अध्यापक थे कई सारे शिष्य थे तो अध्ययन करने में उनका जीवन लगा हुआ था और उसमें उनका गया जाना हुआ और माता से आज्ञा लेकर मैं गया जाना चाहता हूँ, पिताजी का श्राद्ध करना है वहां पर कर्म करना है। तो माता ने आज्ञा तो दी परंतु अब निमाय को देखे बिना वो नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि जब तुम पिता का पिंडदान करते हो कि साथ साथ मेरा भी कर देना क्योंकि तुम्हारे विरह में मैं नहीं रह पाऊंगी। परंतु फिर भी आज्ञा दी कि तुम जल्दी लौट कर आना। तो गया गए तब तक तो वो गृहस्थ जीवन में अपने घर में रचे पचे रहते थे परंतु जब गया से वापस आए तो महाप्रभु का जो उनका मुखमंडल है उनका भाव है उनकी चेष्टाएं ये सब बदल चुका था। जैसे वर्णन आता है कि कृष्ण लीला में जब कृष्ण गोकुल से मथुरा गए और जब वापस आना था और नंद बाबा ने जब कहा कि कृष्ण अब हम चले वापस इतना कहते ही ठाकुर जी के आव भाव बदल गए, चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने बाबा जी को कहा कि बाबा अब हम वृंदावन नहीं आएंगे, और इतना कहते ही नंद बाबा रो पड़े हैं। क्या कह रहे हो गोविंद? बोले हाँ बाबा ये सच है, हमें हमारा अवतार कार्य पूरा करना है, इसलिए अब हम ब्रज नहीं आएंगे। इतना कहते ही गोविंद के मुख से बस ये शब्द निकला और खुद भी रो पड़े कि अब मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, तो विरह सताएगा, माता का विरह सताएगा। वहां तो स्थिति हुई, परंतु ब्रज में जब नंद बाबा गए और यशोदा को सुनाए, यशोदा ने देखा नंद बाबा को, अकेले हैं, गोविंद कहाँ है, और तब क्या बोले, वो क्या बोल सकते हैं है? तो ब्रज जाने के समय वापस लौटना था, तो भगवान कृष्ण की भी ऐसी ही मुद्रा हो चुकी थी, गंभीर चेहरा हो गया, और वैसे ही यहाँ पर निमाय जो है अब उनका चेहरा गंभीर होने लगा। और उसी समय जो है ईश्वरपुरी सॉरी उनके गुरु जो है विद्या भारती, वो वहां पर केशव भारती वहां पर आए, तो अब समाचार फैलने लगा कि निमाय जो है सन्यास लेने वाले हैं। तो चारों ओर तो फैल गया, परंतु समाचार सुनते सुनते लक्ष्मी प्रिया ने सुन लिया, जब वो 18 साल की हो गई थी, तो और भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे, तो उन्होंने सुन लिया कि महाप्रभु जो है सन्यास लेने वाले हैं। एक दिन वो अपने शयन कक्ष में चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रही थी, चरण संवहन कर रही थी, महाप्रभु बैठे थे, उसी समय उन्होंने पूछ लिया कि प्रियतमे, मैंने सुना है कि आप सन्यास लोगे। तो महाप्रभु चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, और इतना बोलते बोलते तो लक्ष्मी प्रिया के हृदय से आंखों से जो अश्रु धारा बहने लगी, और उसी अश्रु से महाप्रभु के चरण जो है समाहन हो रहे थे, उसी से उनका अभिषेक हो रहा था। और जब इतना सुना तो महाप्रभु चुप हो गए, थोड़ी देर के लिए कुछ बोल नहीं पाए, क्या बोले, क्योंकि विष्णुप्रिया की स्थिति देख करके है कि इनका क्या होगा और ये कितना सहन कर सकती है, इसको सुन करके महाप्रभु कुछ बोले नहीं, परंतु आखिर में धैर्य धारण करके उस हृदय विदीर्ण करने वाले उन शब्दों को बोल ही दिए, हाँ प्रियतमे मैं सन्यास लूंगा। क्या बीती होगी विष्णुप्रिया पर, परंतु साथ ही साथ महाप्रभु ने कहा कि धैर्य धारण करो देवी, और याद करो हम जिस अवतार कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे सन्यास लेना ही होगा, और सन्यास लेकर के इस कलयुग के जीवों के घर घर जाना होगा, और जा करके मुझे उनके पास हरिनाम की भिक्षा मांगनी होगी, तभी इसका उद्धार हो सकता है, इस लोक कल्याण के उद्धार के लिए देवी तुम मेरा सहयोग करो। चैतन्य महाप्रभु ने उनको धीरज धारण करने के लिए कहा, और जब इस प्रकार से कहते कहते महाप्रभु ने उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, तब जो है विष्णुप्रिया आश्वस्त हो गई, थोड़ी स्वस्थ होकर फिर स्वस्थ हो गई, और उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप इसी में यदि खुश है तो मेरी भी खुशी यही है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, भगवान की प्रसन्नता में अपने आप को प्रसन्न रखना, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर चेष्टा करना। यदि हम भक्ति करते करते हमारे अपने सुख के लिए सोच रहे हैं, अपने फेरे में हैं, तो भक्ति तो बहुत दूर है। परंतु भगवान की खुशी में खुशी मानकर वो विष्णु प्रिया ने अपना श्रेष्ठ जीवन जो है, भगवान फिर सन्यास लिए, सन्यास के बाद वो ढाढ़ देश चले गए, और सची माता और ये दोनों ही लक्ष्मी प्रिया भगवान के विरह में रो रो करके जीवन बिताने लगी। फिर महाप्रभु के लिए समाचार मिला कि वो अब नवदीप होकर के कुलिया जा रहे हैं, तो नवदीप में उनका दर्शन होगा, परंतु क्योंकि ऐसा विधान है कि संन्यास लेने के बाद एक बार अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना होता है, तो महाप्रभु धार देश से जब आए वापस तो नवदीप होकर के अपने जन्मभूमि का दर्शन करके कुलिया जाने वाले थे। तो गंगा के उस पार से ही उन्होंने अपने जन्मभूमि का दर्शन किया और इस पार से हजारों भक्त जो है महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जुड़े थे, उस पार गए थे और सबके मुख से नाद हो रहा था, गौर चंद्र की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, इस प्रकार से जय घोष हो रहा था और भीड़ लगी थी भगवान का दर्शन करने के लिए। तब ये सती माता और विष्णुप्रिया भी वहां पर गए हैं, परंतु इस पार थे और उस पार इतनी भीड़ में भी चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह जो है आजानुलंबित भुजो गौर क्रांति बहुत सुंदर रूप से उनका जो विग्रह दिखाई दे रहा था। तो विष्णुप्रिया को तो इसी द्वार इसी किनारे से गंगा के उस पार का दर्शन हो रहा था, तो दर्शन हो करके वो मूर्छित हो गई, अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी सती माता दोनों ही। फिर धीरे धीरे अपने आप को जब मूर्छित अवस्था से बाहर आई तो देखा कि वहां से सब कुछ चला गया है, भगवान केवल थोड़ा सा दर्शन दे करके निकल गए, फिर से अपने घर लौट आए। और जब महाप्रभु शांतिपुर में आए थे सभी भक्त वहां भी दर्शन करने के लिए गए थे, परंतु भगवान ने विष्णुप्रिया के लिए मना किया था कि उनको मत लेकर आना, परंतु उनको बताया नहीं गया, किसी ने बताया नहीं, परंतु एंड समय में जब से लोग जा रहे थे तब बताया कि महाप्रभु ने आने के लिए मना किया, तब उनके हृदय में क्या बीती होगी। परंतु स्वामी की सेवा में ही अपना सुख मानकर उस विरह को व्यथित सहन करती रही। और आगे चलकर जब उनका हृदय इतना व्यथित हो गया कि अरे मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूँ, और महाप्रभु जब उस पार से चले गए थे पहले, तब भी उनके मन में दुख हुआ था कि मेरे कारण महाप्रभु अपनी माता को मिलने के लिए नहीं आए, मेरे कारण, तो उनके हृदय में बहुत दुख हो गया। उस दुख को जब भगवान तो अंतर्यामी है, अपने प्रियतमा को दुख कैसे नहीं समझेंगे, उसको जब स्मरण के अनुभव किया भगवान ने, और भगवान जब अपने भक्तों की पराकाष्ठा को अनुभव करते हैं तो अपने धर्म को, अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। तब भगवान एक बार अपने घर पर वापस आते हैं और सती माता उनका भर भर के नेत्रों से दर्शन करती हैं और विष्णुप्रिया उनके चरण की रज को अपने शरण पर रखती हैं। परंतु अब जीवन इस प्राण को रखने के लिए कुछ तो उपाय चाहिए, तब महाप्रभु उनको अपनी चरण पादुका प्रदान करते हैं और उसी की वो फिर बाकी का शेष जीवन जो है उसी की तीनों टाइम त्रिसंध्या उनकी पूजा करती है और गौर नाम का जप करती है, गौरांग हाँ गौरांग। ऐसी भक्ति थी, बोले कठोर उन्होंने तपस्या को प्रारंभ कर दिया, प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक गौर नाम के भगवान के नाम का जप करती थी और एक माला पर एक चावल का दाना रखती थी और शाम तक जितने भी चावल के दाने होते थे उसी को पका करके खाती थी, भोजन के रूप में ग्रहण, भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करती थी, बस इतना ही। तो इतना अद्भुत चरित्र है, अब मैं तो केवल स्पर्श किया, क्या कह पाएंगे, थोड़ा सा कह पाए, उसमें भी क्षमा मांगनी होगी सभी आचार्यों से क्योंकि इनका जीवन इतना संक्षिप्त में नहीं होता है, तो हमें क्षमा करिए, ऐसी प्रार्थना इन सभी आचार्यों के चरणों में है, माँ विष्णुप्रिया देवी जी के चरणों में भी, और इन सभी आचार्यों को प्रार्थना करते हैं कि हम पर कृपा करें ताकि हम भी उनके समान, या उनके समान तो नहीं बन सकते पर उनका एक अंश भी हमारे अंदर आ जाए। और आप सभी वैष्णव को भी प्रार्थना करते हैं कि ठीक से कह नहीं पाए इसलिए क्षमा कीजिए, और आप सभी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आगे चलकर इनको ठीक से थोड़ा ज्यादा कह पाए, पूरा तो जिंदगी भर नहीं कह पाएंगे क्योंकि न तो बुद्धि है, न तो वाणी है, न ऐसी कोई भक्ति है, परंतु बस विश्वास रखिए क्योंकि आचार्य जो कृपालु होते हैं हम सब पर कृपा करें, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम भी ठाकुर जी की सेवा करें। इसी कामना के साथ इस प्रवचन को विराम दिया जाता है। श्री विष्णुप्रिया देवी जी की, विश्वनाथ चक्र ठाकुर की, रघुनंदन दास की, रघुनाथ दास गोस्वामी की, पुंडरीक विद्यानिधि की, श्री प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पुराण की, निताई गौर हरि कृपा।